الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين نبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، صدق الله العلي العظيم. ہم سورہ یاسین کی، جسے قلب قرآن کہا جاتا ہے، تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور ہم نے کل جو ہے آپ کے سامنے ظاہراً چھٹی اور ساتویں آیت تک ہم نے پہنچایا تھا، بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. تو سورہ یاسین جو ہے اس کے بے انتہا فضائل و مناقب ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا سے کلام شروع کیا. یاسین اللہ رسول خدا سے مخاطب ہوا اور فرمایا انک لمن المرسلین. قرآن کریم میں بہار علیہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول کے پانچ نام آئے ہیں، لیکن اور روایات میں ہے کہ رسول خدا کے 12 نام ہیں، اور 10 قرآن کریم میں ذکر کیے گئے کہ ان میں سے ہیں محمد، جیسے مثلا قرآن میں آیا ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، اور خود احمد نام آیا ہے رسول خدا کا، یاتی من بعد اسمه احمد، اور جو نام آئے ہیں ان میں سے عبداللہ ہے جس کو میں پہلے پیش کر چکا ہوں، اور طہ، نون، یاسین، اور سورہ مزمل میں مزمل، مدثر، اور خود رسول خدا کو ذکر کہا گیا، قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولا. تو ایسے قرآن کریم کے اندر یہ نام پیش کیے گئے ہیں رسول خدا کے، اور ہم نے پیش کیا کہ رسول خدا جو ہیں وہ انک لمن المرسلین، یہاں پہ بے شک اللہ پیغمبر سے مخاطب ہے کہ ہم نے آپ کو مرسلین میں قرار دیا. ہم نے نبی اور رسول کا فرق بتایا تھا، اور پھر جو رسول ہیں ان میں بھی ایک فرق ہے کہ ان میں کچھ کو ایک اللہ نے بستی پہ مبعوث کیے بھیجا، کسی کو شہر پہ، کسی کو بڑے علاقے پہ، اور کسی کو پوری کی پوری جو ہے ان کا پیغام عام ہے، جیسے رسول خدا کا پیغام سب کے لیے ہے، عام ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. پھر ان میں سے کچھ اولی العزم ہیں کہ جن کی شریعت جو ہے وہ گزشتہ شریعتوں کی ناسخ ہے، جیسے جناب نوح کی شریعت جناب آدم کی شریعت کی ناسخ ہے، اور جیسے جناب ابراہیم، پھر جناب موسیٰ، عیسیٰ، اور ختم مرتبت کے جن جو تمام شریعتوں کے ناسخ، اور ان کی شریعت قیامت تک کے لیے باقی ہے. تو بہرحال ان اولی العزم پیغمبروں میں صرف ایک ہیں خاتم النبیین، وہ ہیں سرور کائنات، اور وہی سردار انبیاء، سید المرسلین ہیں. تو اللہ نے ان سے متعلق کہا کہ ہم نے آپ کو انت، یعنی آپ جو ہیں علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پہ ہیں. اللہ کے رسول نے ایک حدیث فرمائی ہے جس کو میں، یہ تفسیر اطیب البیان ہے، یہ بہترین تفاسیر میں سے ہے، 14 جلدوں پہ مشتمل ہے، اس کی جلد نمبر 11 سے میں آپ کے لیے کچھ مطالب پیش کر رہا ہوں، کہ جس میں انہوں نے یہ حدیث رسول اسلام سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائی ہے کہ ما من شیئن یقربکم الی الجنت ویبعدکم عن النار الا وقد امرتکم بہی وما من شئین یبعدکم عن الجنت ویقربکم الی النار الا وقد نہیتکم عنہ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہیں جنت سے قریب کرتی ہو اور جہنم سے دور کرتی ہو اور میں نے تمہیں اس کا حکم نہ دیا، اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جو تمہیں جہنم سے دور کرتی ہو اور جہنم سے قریب کرتی ہو، جنت سے دور اور جہنم سے قریب کرتی ہو اور میں نے تمہیں اسے روکا نہ ہو. تو پیغمبر اسلام نے اپنی بعثت کا حکم بتایا، یعنی فلسفہ بتایا ہے کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ صراط مستقیم کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ مجھے بے شک کے اللہ نے صرف اس لیے بھیجا کہ میں مکارم اخلاق کو اس کے آخری درجے تک پہنچا دوں. ہر دین کی ایک پہچان ہے، اور میرے دین کی پہچان اخلاق ہے. تو اخلاق کو رسول خدا نے بہرحال بتایا، اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ وہذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فتفرق بکم ان سبیلے. تو اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ یہ میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، اسی کی اتباع کرو، یعنی جو سیدھا راستہ ہے اس کا اتباع کرو. और मुख्तलिफ शैतान के रास्तों पे मत जाओ कि जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर देंगे। तो अल्लाह सुबहाना व तआला ने ये जो भारत में दलील खुलासा पेश कर रहा हूँ, फिर मैं जो आज के तो अल्लाह ने यहाँ पे फिर कुरान हकीम कहा कुरान को, वल कुरान अल हकीम, कुरान हकीम की कसम, जिसका हमने पेश किया था कि ये या हाकिम के माना में है कि कुरान हुक्म करता है हक व बातिल के दरमियान, या मुहकम के माना में है यानी उस सवार जो बिल्कुल सीधा रास्ता है, ला यातिल बातिल वला मिन खल्फ, यानी जो इसको ला यानी ला यातिल बातिल मिन खल्फ वला मिन बैन यदह, यानी बातिल इसको कभी भी नहीं ले सकता, कभी भी बातिल जो है वो कुरान में शामिल नहीं होता, बल्कि कुरान जो है वो हमेशा हक है। हाकिम यहाँ पे हकीम जो है बेमाना है मुहकम के है, यानी उस सवार है बिल्कुल सीधा रास्ता, या फिर हकीम बेमाना है जो हिकमत यानी हिकमत और दानाई वाला। तो अब ये तीन माना हमने कल पेश किए थे। तो अल्लाह ने फौरन यहाँ पे जब पेश किया कि तंजील अल अजीज रहीम, अजीज यानी इज्जत वाला, जो जिल्लत के मुकाबले में कि वलिल्लाहिल इज्जत व जमीया, मन खाना युरीदुल इज्जत था, जो भी तुम में से इज्जत चाहता है वलिल्लाहिल इज्जत व जमीया, तो फिर सारी इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदे बन जाओ तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। हमने मुख्तलिफ आयात और पहले पेश कर चुके हैं। तो यहां पे अल्लाह ने अपने इज्जत से मुतालिक बात कहा, लेकिन फौरन कह दिया अजीज रहीम, ताकि लोग खौफजदा ना हों, बल्कि अल्लाह की इज्जत का, अल्लाह ने व रहमती वसअत खुल्ला शय फसा अक्तुबहा लिल्लज़ीना यत्तकून व युतून ज़कात व लज़ीना हुम बे आयातिना युमिनून। सूरह अनआम की आयत नंबर 155 में अल्लाह सुब्हानहु तआला ने फरमाया कि मेरी रहमत जो है वो हर चीज से वसीतर है, और मैं अपनी रहमत को उनके लिए लिख दूंगा जो तकवा अख्तियार करेंगे और जक़ात अदा करेंगे और मेरी निशानियों पे ईमान लेके आएंगे। दुआओं के अंदर हम आयम अलैहिस्सलाम की पढ़ते हैं, या मन सबकत रहमत हो गदबा, ए वो परवरदिगार के जिसकी रहमत उसके गजब पे सबकत रखती है। तो पहले रहमत है, बाद में गजब है, और वो रहमतिन वासिया, अल्लाह जो है वो बहुत ही यानी उसकी रहमत हर चीज पे वसीतर है, उसकी जो रहमत जो है वो रहमत वासे है। अब हमने जो कल आयात शुरू की थी, मैं वहां पे चलूंगा इंशाल्लाह दोबारा, क्योंकि मैं कल उसकी तफसीर पूरी मुकम्मल नहीं कर सका था, आज मैं जल्दी जल्दी उसको पेश करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। ले तुंजरा कौम मा उन्जरा आबहुम फहुम गाफिलून, हमने ये आपको कुरान इसलिए दिया है, तंजील अल अजीज रहीम, ये अजीज रहीम की तरफ से आपको दिया गया कुरान, ले तुंजरा कौम मा उन्जरा आबाहुम फहुम गाफिलून, कि आप उन लोगों को डराएं कि जिनके आबा अजदाद को डराया नहीं गया और वो गफलत में, फहुम गाफिलून। ज्यादातर मुतरजमीन ने तर्जमा यही पे किया कि ये जो माँ है, ले तुंजरा आप डराएं तंबीह करें कौमन उस कौम को, मक्के वालों को, हिजाज वालों को, मा उन्जरा आबाहुम कि जिनके आबा अजदाद को डराया नहीं गया, इंतजार नहीं किया गया, तंबीह नहीं की गई, मा उन्जरा। तो यहां पे अक्सर जो है मुफस्सरीन ने लिखा ये माँ माए नाफिया है, लेकिन बाज ने कहा ये माँ माए मौसूला है, और इमामे जो है वो सादिक अलैहिस्सलाम से बाज मुफस्सरीन ने एक रिवायत को नकल किया है, कुलैनी ने, मरहूम शेख मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी ने एक सही सनद रिवायत हजरत अबू बसीर से रिवायत की है, फरमाते हैं लतुंजरल कौमुल्लदीन अंता फीहिम कमा अंजरा आबाहु कमा उन्जरा आबाहुम फहुम गाफिलून गाफिलून अन अल्लाह व अन रसूलिल्लाह व अन वादही, कि यहां पे माँ जो है वो माए मौसूला है। माए मौसूला यानी ये नहीं कहा जाएगा कि आप अल्लाह ने आपको भेजा है मक्के वालों के दरमियान में कि उनको इंतजार करें, उन्हें डराएं, उन्हें तंबीह करें, मा उन्जरा आबाहुम, अगर नाफिया लें तो ये बनेगा कि जिनके आबा अजदाद को नहीं डराया गया, क्योंकि उससे यानी जनाबे ईसा से लेकर रसूल खुदा तक कोई नबी नहीं आया, तो इसलिए उनको नहीं डराया गया, जनाबे ईसा भी मक्के में तो नहीं आए थे। तो यहां पे कुछ लोगों ने तर्जमा ये लिया कि नहीं, ये माए नाफिया नहीं है बल्कि माए मौसूला है, यानी कि जिनके आबा अजदाद को भी डराया गया, फहम गाफिलून, लेकिन वो भी गफलत में रहे, आप इन्हें डराएं क्योंकि इनके आबा अजदाद भी गफलत में रहे, ये भी गफलत में है। तो क्योंकि हमारा शिया अकीदा यह है कि जमीन कभी भी हुज्जत खुदा से खाली नहीं होती, जनाबे ईसा के औसिया मौजूद थे, तो हर जगह पे अल्लाह ने वमा कुन्ना नुहलिकुल कुरा हत्ता नबअथ रसूल, हम किसी भी बस्ती को अजाब नहीं देते जब तक कि उन पे हम रसूल ना भेज दें। पहले अल्लाह पैगाम भेजता है, जब लोग ना माने तो फिर अजाब भेजता है। तो अल्लाह ने मुसलसल पैगाम भेजा, और हुज्जत खुदा से जमीन कभी भी खाली नहीं होती। तो या नबी आएंगे, रसूल आएंगे। अब जनाब ईसा और जनाब रसूल खुदा के दरमियान में कोई नबी नहीं थे, लेकिन औसिया आते रहे। आखिरी जो औसिया थे वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अबू तालिब, ये दोनों आखिरी वसी थे, औसिया में से थे। हजरत इस्माइल, नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम की, हजरत अबू तालिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अबू तालिब दोनों सलामुल्लाह अलैहिमा, ये हजरत इस्माइल के औसिया में से थे। हक़ुल यकीन में भी है और बहुत सी किताबों के अंदर इस पर रिवायात मौजूद हैं। तो अल्लाह सुबहान व तआला औसिया भेजता रहा और उन्हें लोग डराते रहे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता, वो असर ही नहीं लेते थे। लतुंज़िरा कौमन मा उन्ज़िरा आबाहुम फहम गाफिलून। तो ऐ मेरे हबीब, ये अल्लाह ने आपको कुरान दिया है कि आप इनको डराएं, इंतजार करें, तंबीह करें। जिनके आबा अजदाद को भी तंबीह किया गया था, ये तर्जुमा बनेगा अगर माय मौसूल लेंगे, फहम गाफिलून, और वो फिर भी गफलत में है। गाफिल कहते हैं जो हीडलेस जैसे कहा जाता है, जो जैसे जो तवज्जो ना रखता हो। नींद जैसे गफलत है, यानी जब हम सो रहे होते तो हमें कुछ नहीं पता होता, होश नहीं होता। तो जैसे गाफिल उसे कहा जाता है कि जो किसी भी आवाज से तवज्जो ना करे। तो गफलत की बहरहाल कसीउल कल्ब, जो सख्त दिल हो जाता है वो फिर गफलत में चला जाता है। इसलिए सख्त दिल ना हो, इसलिए कहा जाता है कि रोना बहुत जरूरी है। इंसान वही सख्त दिल होता है जो रोना बंद कर दे, और जिसको रोना नहीं आता वो सख्त दिल हो जाता है। जिसे रोना क्यों नहीं आता, अल्लाह ने कुरान करीम में जो मिसाल दी है सूरह बकरा के अंदर, इन्ना मिनल हजारत लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, कसद कुल, यानी बाज लोगों के कसद कुल, यानी बाज लोगों के दिल इतने सख्त हो जाते हैं कि पत्थर, बल्कि अल्लाह कहता है कि इन्ना मिनल हजारत लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, पत्थरों से भी पानी जारी हो जाता है। यानी अल्लाह ने जो मिसाल दी है सख्त दिलों की, कि वो पत्थर से भी पानी जारी हो जाता है, लेकिन कुछ इतने सख्त दिल होते हैं कि उनसे आंसू नहीं बहते। यानी मुराद ये है, उसका मफहूम ये है आयत का, कि पत्थरों से भी पानी जारी हो जाता है लेकिन कुछ तो नहीं। रोने से कसावत कल्ब दूर होती है, दिल सख्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि कसावत कल्ब का नतीजा गफलत है। सख्त दिल हो जाए तो फिर इंसान गाफिल होने लगता है, वो आदमी गफलत में चला जाते हैं, उस पर बात असर नहीं करती, तबलीग असर नहीं करती। इमाम हुसैन सलाम तबलीग कर रहे हैं लेकिन गफलत में हैं लोग और सुन नहीं रहे, मैदान करबला में फिर भी उन्हें मार दिया। तो फहम गाफिलून, तो यहां पर अल्लाह सुब्हान तआला कह रहा है कि भाई ये गफलत में चले जाएंगे, ये जो गफलत में चले गए हैं, फहम गाफिलून, इनको आप तब्लीग करें। कसावत कल्ब जो है उसका नतीजा गफलत है, और कसावत कल्ब जो है ना रोने का नतीजा है। और वो ना रोना यानी क्यों नहीं आता इंसान को रोना, जो है वो मुख्तलिफ उसमें कहते हैं कि भाई बाज़ अवक़ात इंसान पुरखोरी, ज्यादा जो खाते हैं, बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, वो कसावत कल्ब का नतीजा बनती है। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो लक़द हक़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, सूरह यासीन जो है वो इसमें आप लोगों को भी जबानी पढ़ पढ़ के याद हो गई होगी। लक़द हक़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, मैं कल यहां तक पहुंचा था, मैं सूरह की तफ़सीर पेश करूंगा आज। तो लक़द हक़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, यहां पे अल्लाह सुब्हान व तआला फरमा रहा है कि यानी उनके नजदीक साबित हो चुका है हक क्या है। लक़द हक़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम, उनमें से अक्सर पे हक जो है वो रोशन है बतहकीक। फहम ला युमिनून, उसके बावजूद भी वो ईमान नहीं लेके आते। ऐसा नहीं है कि उनका हक नहीं पहुंचा, रसूल खुदा ने पहुंचाया, हक पहुंच गया। तो अब ये वजूद मुकद्दस रसूल खुदा कुरान मजीद जो है वो, उन्होंने कभी कोई कोताही नहीं की, ना कुरान ने कोताही की ना रसूल खुदा ने, तो हक पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी लोग फहम ला युमिनून, ईमान नहीं लेके आए। मुशरकिन और कुफार पे अक्सर में बात पहुंची लेकिन अक्सर ईमान नहीं लाए। बहुत से मुसलमान, उन तक अक्सर हक पहुंच गया, विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पहुंचा दी गई, फिर भी नहीं माना विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला पैगाम भेजता रहता है लेकिन बहुत से लोग ईमान नहीं लेके आते। तो ये जो है ना लक़द हक़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम, ये जो है वो अल्लाह सुब्हानहू ताला तफसीर है कि आयात पढ़ी गई, उन्हें मुसलसल सिखाया गया, बताया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो ईमान नहीं लेके आए। और अल्लाह सुब्हान तआला ने जो है वो कुरान में और जगहों पे, सूरह हाक्का के अंदर जन्नत से मुतालिक और जहन्नम से मुतालिक आयात हैं, मैं उसको पेश करना चाहता हूं कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहा है कि ये जितने भी लोग हैं ये ईमान नहीं लेके आते। मैं सिर्फ अगली आयात को जल्दी जल्दी पेश करूं और उसके अंदर फिर इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त मैं देख रहा हूं गुजर रहा तेजी से, इन्ना जअलना फी अअनाकहिम अगलालन फहिया लिलअज़्क़ान फहुम मुक़महून, और हमने उनके गलों में यानी गले के अंदर जो है जंजीरें डाल दी हैं। अगलाल इन्ना जअलना फी अअनाकहिम, अअनाक जमा है उनक, उनक कहते हैं गर्दन को। इन्ना जअलना फी अअनाकहिम अगलालन फहिया लिलअज़्क़ान फहुम मुक़महून, और वो जंजीरें जो हैं हमने तौक डाल दी हैं और वो उनकी ठोड़ियों तक आ गई हैं। फहम मकमहून, तो वो अपनी गर्दनें उठाए हुए हैं, यानी ईमान फिर भी नहीं लेके आ रहा है लेकिन ये उठा। अब ये इसमें क्या तफसीर है इसकी, क्या अल्लाह ने तंजीरें डाल दी हैं, यानी आया ये जहन्नम में ऐसा होगा, क्योंकि जैसे सूरह हाक्का में है खुदू हो फगुल्लू हो, अल्लाह कहेगा जहन्नम वालों के मुतालिक फरिश्तों से कि इनको घसीट के ले जाओ, फगुल्लू हो इनके गलों में तौक डाल दो, जंजीरें डाल दो, सुम्मल जहीम सल्लू हो इन्हें जहन्नम में झोंक दो, सुम्मा फी सिलसिलत ज़रअुहा सबऊन ज़राअन फसलकू हो। सूरह हाक्का की आयत नंबर ये 30, 31, 32 बल्कि 33, 34 तक मैं अगली भी आयत पढ़ देता हूँ। सुम्मा फी सिलसिलत ज़रअुहा सबऊन, फिर और वो जो 70 ज़रा हैं, ज़रा कहते हैं इस फासले को, ये कोहनी तक ज़रा, 70 जो हैं वो ज़रा लंबी जो जंजीरें हैं वो इनके गले में डाल, फसलकू हो घसीटो इनको, इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। ये कौन थे, ये जो हैं वो अल्लाह सुभान व तआला कह रहा है कि ये अल्लाह पे ईमान नहीं रखते थे, ये अल्लाह पे ईमान नहीं लेके आए। वला यहुद्दु अला ताअमिल मिस्कीन, और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। तो अल्लाह सुभान व तआला ने इनसे मुतालिक जो है वो ये पेश किया है कि ऐसे लोग जो अल्लाह पे ईमान नहीं लेके आते थे। अब बहुत से लोगों ने सवाल किया यहां पे, भारत में सवाल भी जल्दी लेते रहता हूं, तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम तिलावत के बगैर पढ़ें, यानी हम तिलावत नहीं करते, आराम आराम से पढ़ते हैं, भाई तिलावत आप पढ़ रहे हैं कुरान के करीम पढ़ रहे हैं, तो वो तमाम फायदे जो लिखे गए हैं वो आपको फिर भी उसका सवाब मिलेगा, चाहे यानी ऊंची आवाज से कुरान को ऊंची आवाज से पढ़ने के लिए कहा गया कि यानी क्योंकि कुरान का देखना भी सवाब है, पढ़ना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, तो ऊंची आवाज से पढ़ें ताकि, और देख के पढ़ें चाहे हिफ्ज भी हो, तो देखने का भी सवाब मिलेगा, सुनने का भी सवाब मिलेगा, पढ़ने का भी सवाब मिलेगा। तो ये वाहिद किताब है जिसका देखना पढ़ना और सुनना तीनों सवाब है। तो अब यहाँ पे हम आयत पे की तफसीर पेश कर रहे हैं कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है कि इन्ना जअलना फी अनाकिम अग़लालन फ़हिया लिलअज़्क़ान फ़हुम मुक़महून, तो अभी कुरान में जहन्नम से मुतालिक भी है, तो अब ये जो है इन्ना जअलना फी अनाकिम अग़लालन फ़हिया लिलअज़्क़ान फ़हुम मुक़महून, मुक़मह मुक़महून जमा है मुक़मह की, मुक़मह कहते हैं जो गर्दनें उठा रखी हों जैसे अकड़े हुए हों। अल्लाह कह रहे हैं जैसे इनके घरों में जंजीरें हैं और इन्होंने अपनी, अभी आया किनाया है या कि नहीं, अल्लाह सराहतन कह रहा है। यहाँ पे बहुत से उलमा ने ये लिखा है कि ये शायद जो है इनकी किनाया है कि ये जो तकब्बुर और नखवत तासुब की वजह से, क्योंकि दीन को नहीं मानते, तो ऐसा जैसे इनके गलों में जंजीरों अकड़े खड़े हैं, फहम मुकमाहून जैसे गर्दनें उठा रखी, इन जंजीरों की से गर्दन उठा रखी। तो अब ये तासुब की जंजीरें हैं, तकब्बुर की जंजीरें हैं, हवस परस्ती की जंजीरें हैं, इन तमाम जंजीरों की वजह से अब ये इनकी गर्दनें ये झुक के देखने के लिए तैयार नहीं है, पैगाम सुनने के लिए तैयार नहीं, कुरान सुनने के लिए तैयार नहीं, हिकायत हिदायत लेने के लिए तैयार नहीं, गर्दनें अकड़ी हुई हैं। तो अब यहाँ मुकमह, मुकमह कहते हैं मरहूम ये अल्लामा हुसैन बख्श जारा साहब की तफसीर अनवारुन नजफ है, उसमें मैं देख रहा था, तो जिल्द नंबर जो है वो 12 में ज़ाहरन, जी हाँ 12 में उन्होंने लिखा है सूरह यासीन की तफसीर के अंदर, वो भी 14 जल्दों पर तफसीर है, बेहतरीन तफसीर है उर्दू के अंदर है। तो वो वहाँ पर फरमाते हैं कि मुकमह जो है वो ऊँट को कहा जाता है, ऊँट पुराने ज़माने में अरब ऊँट चलाते थे, तो मुकमह वो वाला जब ऊँट गर्दन उठा के खड़ा हो जाता था, उसको ठंडे पानी में खड़ा करते थे, तो वो आराम से गर्दन उठा लेता था आसमान को देखने था, तो इन्होंने गर्दनें उठा रखी। तो मुकमहून यहाँ पे और खुद इन्होंने भी मरहूम अलामा तबरसी ने भी अपनी ये इन्होंने मजमल बयान के अंदर लिखा है इस बात को, और कि जो है ये ऊँटों के अपनी गर्दनें उठाने का, अलमुकमह अलगामिद बसर हो बादा रफ इरासे, जो अपना सर उठाए रखे हों और आंखें बंद कर ले उसे कहते हैं मुकमह, मुकमहून यहाँ पे अल्लाह ने कहा। जैसे ऊँटों से मुतल्लिक़ नहनु अला जवानिबिहा क़ुऊद नग़ुज़ु तरफ़ो कल इबलिल क़िमाह, तो ये अरब शायर का शेर लेके आए हैं कि शायर ने जो है वो अपनी कश्ती का जो हाल सुनाया है कि हम लोग जब कश्ती में बैठते हैं तो बिल्कुल ऐसे जैसे ऊंट अपने सरों को उठा के देख रहे होते हैं, हम वैसे ही आसमान को या उसके अतराफ को देख रहे होते हैं कि अब हम कश्ती की ऊंचाई को देख रहे हैं ऐसे। तो ये नहीं, ये ऊंटों से मुताल्लिक जो है वो कहा गया है कि ये जो है ऊंट अपने सरों को उठा के, तो ऐसे ही जो है अल्लाह सुब्हान ताला कह रहा है कि ये लोग अपने ऊंटों को अपने गर्दनों को उठा के देख रहे होते हैं। अब ये किसके मुताल्लिक है? बाज़ यहां पे रिवायतें नकल की हैं कि ये जो है वो अबू जहल से मुताल्लिक है। अबू जहल जो है वो बाद में लिखा है अबुल हकम, बाद में लिखा है अबुल हकम, हकमत का बाप था कि बहुत अकलमंद और जहीन था, लेकिन अबू जहल कहा गया उसे। हिशाम उसका नाम था और उसका पूरा शजरा बाज़ लोगों ने, उलमा ने लिखा है। बहरहाल मैं इंशाल्लाह कल परसों में कभी उसका पेश करूंगा पूरा, कि वो पत्थर लेके आया रसूल खुदा को मारने के लिए जब वो नमाज रसूल इस्लाम पढ़ रहे थे, और जब वो पत्थर लेके आया मारने के लिए तो उसने जब उठाया तो वो उसकी गर्दन पे जाके उसने जब उठाया मारना चाहा तो यहां रुक गया गर्दन के पास, और फिर वो वापस गया कुरैश के पास। तो ये इन्होंने मरहूम तबरसी ने जो है, अमीनुल इस्लाम तबरसी ने अपनी मजमूल बयान में इस रिवायत को नकल किया है, और मरहूम अल्लामा हुसैन बचारा साहब ने और उलमा ने भी इसको नकल किया है, और ये यहां से जिल्द नंबर 8 में नकल किया है इस रिवायत को, कि ये जो है वो अबू जहल से मुताल्लिक है कि वो जब पत्थर मारने के लिए आया रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ये पत्थर जो है वो रुक गया, उसका हाथ रुक गया और वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर नहीं मार सका, और जब नहीं मार सका तो वापस गया, और जाने के बाद उसने जो है वो बताया तमाम के तमाम कुरैश को, और जैसे ही वो वहां पे पहुंचा तो उसका हाथ दोबारा सीधा हो गया। और जी हाँ, फी अबी जहल इन्ना जालना फी अनाकिम अगलाना फी अबी जहल खाना हलफा लएन रआ मुहम्मद युसल्ली लयरज़खन्न रअसहु, कि अगर मैं, उसने कसम खाई थी कि अगर मैं मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ता देखूंगा तो मैं उन्हें उनके सर में पत्थर मारूंगा, ईंटे मारूंगा। फाता हो वही सली हो, तो आया जब रसूल खुदा नमाज पढ़े थे, माँ हजर लैद मगा हो, पत्थर हाथ में था वो मारने के लिए तो उसका हाथ रुक गया, वापस गया। बाहर अरब, ये लंबी है, पूरी अरबी नहीं पढ़ूंगा। तो जब वापस गया जाके सुनाया तो मुगैरा बिन शाबा, जो मुगैरा नामी दूसरा एक जो है मुशरकिन में से था, और वो भी उनके सरदारों में से था, और वो बनी मखजूम में से था, उसने जो है वो दोबारा हाथ में पत्थर लिया और उसने कहा कि मैं अना अक्तुलहु बिहादल हजर, मैं इस पत्थर से जाके मोहम्मद का कत्ल करूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उस मलून ने जब ये कहा फाता हो वह यसल्ली यरमीह बिल हजर, तो वो रसूल खुदा फिर भी नमाज ही में थे, उसने चाहा कि मैं पत्थर मारूं, फाग़शाहुल्लाह बसरह, तो अल्लाह ने उसकी उसकी आंखों से कुछ देर के लिए पर्दा डाल दिया कि वो रसूल खुदा को देख नहीं सकता। जब वो रसूल खुदा को देख नहीं पा रहा था तो वापस गया, फजाला यस्मा सौता हो वला यरा हो, उसको आवाज आ रही थी रसूल खुदा की लेकिन वो देख नहीं पा रहा था, वापस गया। फरजा इला असहाब ही फलम यरहम हत्ता नादू, कहा कि भी क्या बात है तेरी, क्या हालत है? तूने कहा कि मैं बिल्कुल, यानी मुझे ख्याल नहीं, मैं मुझे मोहम्मद की आवाज आ रही थी, उसने जाके बताया सारा कि मैं आवाज सुन रहा था लेकिन मैं देख नहीं पा रहा था। तो यहां पे जो है ये अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि फहम गाफिलून, उसके फौरन बाद कि फिर भी गफलत में रहे, इतनी चीजें देखते थे लेकिन उसके बावजूद भी ईमान नहीं लेके आते। इन्ना जालना फी आनाकिम अगलालन फहिल अलखान फहम मुकमून, व जालना मिन बैन अदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दन फाखशनाहुम फहम ला युबसरून। तो ये जो है इन्ना जालना फी आनाकिम अगलालन फहिल अलखान फहम मुकमहून जो है वो अबू जहल और अबू ये मुगैरा बिन शाबा वगैरह से मुताल्लिक है, कि ये लोग रसूल खुदा को इतनी अजियतें देते थे, और कहा जाता है इसकी उमूमियत है, आज भी वो तमाम अफराद जो कुरान सुनते हैं, हिदायत का पैगाम सुनते हैं, आइम्मा अलैहिस्सलाम की अहादीस सुनते हैं, उलमा की तकारीर मजालिस सुनते हैं, और फिर भी ईमान नहीं लेके आते, तो वो बिल्कुल ऐसे ही हैं کہ ان نہ جالنا فی آناق ہی مغلالن فاہل اللہ خان فاقوں، کہ ان کی گردنیں بالکل اکڑی کھڑی ہیں، بالکل ٹیڑھے کہ گردنوں میں جیسے زنجیریں پڑی ہوں اور وہ ٹھوڑیوں تک آ گئی ہوں زنجیریں، اور سیدھی گردنیں نہیں، اور انہیں جھک کے دیکھتے نہیں ہیں، پیغام نہیں سنتے، اور ان کے اکڑ جو ہے گردنوں میں، اردو میں اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے بعض جو ہے علاقوں میں، میں نے دیکھا کہ جیسے بعض علاقوں میں اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ جیسے گردن میں سریا ہو، یعنی اکڑے کھڑے. تو یہاں پہ اللہ نے جو مثال دیا کہ گردنوں میں جیسے زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، توق پڑے ہیں، فہم مقمحون، اور گردنیں ٹیڑی اکڑائے کھڑے میں. تو آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو پیغام نہیں سنتے. میں انشاءاللہ تعالیٰ سوالات بھی جلدی جلدی پڑھتا جاؤں گا، اگر کوئی جواب انشاءاللہ مناسب ہوا تو پیش بھی کروں گا. میں چند ایک روایت ابھی پیش کرنا چاہتا ہوں اس کو انشاءاللہ. یہاں پہ سوال ہے کہ مولانا السلام علیکم. السلام، آپ نے فرمایا تھا کہ خدا رحمان سب کے لیے ہے مگر رحیم صرف مومنوں کے لیے ہے، تو مولانا رحمان رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت، چاہے کوئی اس کو مانے نہ مانے سب کے لیے ہے. رحیم لیکن مؤمنین، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن کی آیت ہے کہ مؤمنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے. میں اگلی آیت سے متعلق اور پھر جو ایک دو روایتیں مجھے بھی اور پڑھنی ہیں، میں جو تیاری کی ہوتی ساری میں پیش نہیں کر پاتا ہوں، پھر مجھے بعد میں وہ ہو رہا ہوتا ہے، تو میں اس لیے سوالات دیتا رہوں گا لیکن جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ جو ہے وہ پیش کرتا چلا جاؤں. میں کین آئی ریڈ قرآن ان انگلش اور اردو بیکاز مائی عربک از ناٹ گڈ، میری عربی صحیح نہیں ہے، تو کیا میں قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھ لوں انگلش میں اردو میں؟ دیکھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن وہ جو کلام اللہ ہے وہ عربی کا قرآن ہے، اردو کا یا انگریزی کا وہ ترجمہ مترجم کا خیال ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا، لیکن جو اللہ نے فرمایا وہ عربی کا قرآن ہے، وہ جو اعجاز ہے، وہ جو زندہ معجزہ ہے، وہ قرآن عربی کا. اس لیے عربی میں پڑھنا قرآن کا بہت ضروری ہے. جو ثواب عربی کا ہے وہ ترجمے کا نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی ترجمہ ضرور پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں قرآن کو، ترجمے سماعت پڑھیں لیکن عربی ضرور پڑھیں. تو اب میں اگلی آیت کو پیش کروں گا. تو اللہ نے جو مثال دی ہے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہ شب ہجرہ سے متعلق جو ہے اس کا شان نزول بتایا گیا، بہت سے علماء نے لکھا ہے اور یہ خود مفسرین نے لکھا ہے شان نزول اس کا، علامہ حسین پاشاعلان صاحب نے بھی لکھا اور مفسرین نے بھی، کہ شب ہجرت جو ہیں وہ یہ آیت ہے کہ اور ہم نے ان کے سامنے، وجعلنا من بین ایدیہم، ہم نے ان کے سامنے دیوار کھڑی کر دی ہے، ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے دیوار کھڑی کر دی ہے، فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور جس نے ان کے سامنے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں اور ان کو کچھ نظر نہیں آتا. تو اب آیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آ کر دیوار کھڑی کر دی ہے تو اللہ ہدایت نہیں دیتا؟ نہ، یعنی ہم ہدایت بھیجتے رہتے ہیں، یہ علم الہی میں ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، نہ یہ کہ اللہ روک دے گا ان کو ایمان لانا. جیسے استاد ایک دیکھتا ہے کہ یہ بچے بالکل کلاس میں نہیں آتے، چھٹیاں کرتے ہیں، پڑھتے نہیں، کبھی بھی ہوم ورک نہیں کرتے، تو یہ فیل ہو جائیں گے. نہ یہ کہ میں زبردستی فیل کر دوں گا، استاد کہہ رہا ہے، بھائی یہ فیل ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ اپنے علم سے بتا رہا، نہ یہ کہ میں نے ہدایت حاصل کرنے نہیں دوں گا، نہیں، یہ نہیں فرما رہا اللہ. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو ہم ہدایت بھیج رہے ہیں، یہ دیکھ ان کی جتنی مرضی، فہم لا یؤمنون، یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. نہ یہ کہ میں انہیں ایمان نہیں لانے دوں گا، یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، اپنے اللہ اپنے علم سے بتا رہا ہے. اور یہ فرما رہا ہے کہ وجہ اللہ میں نے کہ ہم نے ان کے سامنے جو ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، پیچھے دیوار کھڑی کر دی ہے، فہم لا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور ہم نے جو ہے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں اور یہ دیکھ نہیں سکتے. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شب معراج جب جا رہے تھے مکے سے مدینے، کہ کیا ہوا کہ یہ سارے کے سارے جمع ہوئے قریش کے سردار، رسول خدا کے خلاف جو ہے منصوبے بنانے لگے. دار الندوہ عربوں کا کہلاتا تھا کہ جہاں پہ یہ سارے کے سارے آپس میں مشورہ کرنے والے صنادید عرب جمع ہوا کرتے تھے، اور سردار جو تھے جتنے بھی ان کے بڑے بڑے، تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور یہ ابو سفیان، ولید، یہ بڑے بڑے تمام جو ہیں وہ جو سردار تھے وہ سب جمع ہو گئے دار الندوہ میں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے، ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ عتبہ جو ابو سفیان اس کا داماد تھا، ہندا کا باپ تھا وہ، تو وہ ایک مرتبہ آیا رسول خدا سے، وہ کہا کہ بھی جا کے بات کرو محمد سے، تو یہ شہید حسغیب نے بھی روایت نقل کی ہے. تو وہ ایک مرتبہ آیا رسول خدا کے پاس اور اس نے جو ہے وہ چاہا کہ بھئی، کہا کہ بھئی اے محمد سناؤ وہ جو تم شعر کہتے ہو. تو رسول خدا نے کہا میں شعر نہیں کہتا، میں شاعر نہیں ہوں. और हर जबान में दो चीजें होती हैं, नज्म होती है, नसर होती है। नज्म ये जो शेर, इसको नज्म कहते हैं। नसर ये अरबी के दो लफ्ज हैं, नसर कहते हैं ये जो मैं बोल रहा हूं, ये नसर है। और जिसे इंग्लिश में कहते हैं, नज्म को कहते हैं पोइट्री और नसर को कहते हैं प्रोज। प्रोज एंड पोइट्री दो चीजें होती हैं हर जबान में, नज्म और नसर। अरबी जबान में तीन चीजें, नज्म है, नसर है और कुरान है। कुरान ना नज्म है ना नसर है, दोनों से बालातर है। तो अब वो आया, उसने आने के बाद कहा, मैं मोहम्मद उतबा जो है कहने लगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि भाई मैं मोहम्मद जो है मुझे वो तुम अपना शेर सुनाओ। कहा मैं शायर नहीं हूं। तो कहा वही जो तुम कलाम कहते हो वो कलाम सुनाओ। तो कहा कि नहीं, मैं वो मेरा कलाम नहीं है, वो कलाम अल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। कहा वो ठीक है, जो भी है वही सुनाओ। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सूरह फुस्सलत की आयत की तिलावत की उसके सामने। फैन आरज़ फकुल अनज़रतुकुम सायकतन मिसल सायकतन सायकत आद आदि मसमूद, के मैं तुम्हें इन अरजू, मेरे हबीब जब ये आपसे एराज करें, दूरी इख्तियार करें, तो इनसे कह दीजिए मैं तुम्हें डरा रहा हूं उस चीख से, वो जो चीख आद और समूद के लिए बुलंद हो गई थी। कि चीख बुलंद हुई, उनके कानों के पर्दे फट गए और वो खून बहते बहते मर गए। तो उतबा जो एक मरतबा वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए आया था तबलीग से, और मना करने आया था, जवाब देने आया था, एक मरतबा लरजने लगा और कांपता हुआ उठा, रसूल खुदा के मुंह पे हाथ रखा कि बस मुझे और मत सुनाइए, आपको आपके हक का वास्ता, आपको आपके खुदा का वास्ता, मुझे जो है काफी है। उठा और लरसा वो वापस गया। जब वापस आया तो कुरैश के लोग कहने लगे उससे कि भी तू हमें, तू मोहम्मद के कायल होके आ गया, तू डरने लगा है। तो उसने कहा मैं डरता नहीं हूं और ना ही मैं कायल होके आया हूं, लेकिन ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे हैं, यानी वो अपने तौर पे कहने लगा कि ये इंसान का कलाम नहीं है, ये वाकई कोई अजीब गरीब है, इसका असर बहुत होता है कुरान का। तो कुरान करीम में भी सूरह कमर में आया था कि वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान के अंदर बेइंतहा वो जिक्र यानी रिमाइंडर यानी तज़क्कुर याद दहानियां रखी हैं, लेकिन है कोई इससे सबक लेने वाला? तो बहरहाल अब ये सब दारुल नदवा में जमा हुए और उन्होंने फैसला किया कि भी हम रसूल खुदा का कत्ल करेंगे और हर कबीले से एक एक आदमी ले लो, ताकि किसी एक पे सारा कसूर ना जाए, हम एक आदमी के ऊपर जो है वो जो है वो ब्लेम ना जाए, वो कसूरवार ना ठहराया जाए। तो वो उनसे बदला ले सकते हैं मुसलमान, लेकिन अगर हर कबीले से एक आदमी होगा तो किस किस से बदले लेते फिरेंगे मुसलमान? तो ये नई चीज़ें नहीं है। जैसे आज इत्तेहादी फौजें बनाई जाती हैं, अलायंसेस बनाए जाते हैं, ये जो अलायंसेस फोर्सेज होती हैं नई चीज़ें नहीं है, ये पुराने अरबों के अंदर ऐसे ही था। उन्होंने भी अलायंस फोर्सेज बनाई, उन सब में मिलकर हर कबीले से एक आदमी लिया। 40 कबीले थे या 40 से ज़्यादा कबीले थे, बाद में लिखा वो सब जमा होने लगे। अल्लाह ने अपने हबीब को जनाब जिब्राइल ने आके बताया कि दारुल नदवा में अल्लाह ने सुभान तआला ने आपके लिए वही नाजिल की है कि वो दारुल नदवा में मंसूबा बना चुके हैं आपके कत्ल का, आप हिजरत करके मदीने चले जाइए। मदीने का नाम यसरब था। यसरब क्यों जाने के लिए कहा? बहरहाल उसकी तारीख है कि रसूल खुदा की वालदा हजरत आमिना जो हैं वो मदीने से थी, और आपकी जो हैं वो हजरत हाशिम की वालदा वो मदीने से थी, यानी आपके जो जद थे परदादा हजरत हाशिम, उनकी वालदा भी वहीं से थी, और उनकी जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की भी ज़ाहरन जो है इस वक्त जो मुझे याद पड़ रहा है, उनकी भी वालदा वहीं मदीने से थी, यानी यसरब से थी। तो अब कहा कि आप यसरब चले जाएं, ननिहाल की तरफ वहां से। तो अब जो है रसूल खुदा ने सबसे कहा, अपने मुसलमानों से सहाबा से कहा कि अपने अपने घरों में रहें, कोई अपने घर से बाहर ना निकले। तो हज़रत अली इसलिए घर पर चले गए, घर पर थे कि रसूल खुदा ने मना किया। फिर आपने एक अपने खादिम को भेजा कि जाओ जाके अली को बुला लाओ और कहा कि आप मेरे बिस्तर पर सो जाइए। शब हिजरत का वाक़ सबके जहनों में है कि जनाब अमीर सलाम ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह मेरे आपके बिस्तर पे सोने से आपकी जान बच जाएगी? कहा हाँ या अली, मेरी जान बच जाएगी। फौरन जनाब अमीर सजदा शुक्र में गए। इस्लाम में पहला सजदा शुक्र जनाब अमीर उल मोमिनीन बजा लाए, और सजदा शुक्र बजा लाने के बाद कहा परवरदिगारा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस्लाम बनाया, मैं तेरे हबीब की जान बचा रहा हूँ। तो आपने कहा कि मैं है हिजरत कर जाऊंगा। और ये क्यों मैंने सारा सुनाया, ये जो है फिर आयत नाजिल, यह है सूरह यासीन की, ये आयत की तिलावत कर, सूरह यासीन को पूरा इस आयत तक रसूल खुदा ने तिलावत किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लतुंज़िर क़ौमन मा अंज़ला अबाहुम फहुम ग़ाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فالى الاذقان فهم مقمحون، ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فالى الاذقان فهم مقمحون. اور اس کے بعد وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. یہ آیت جو ہے وہ تلاوت کی رسول خدا نے کہ ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار بنا دی ہے، ان کے پیچھے بھی، اور ہم نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، فہم لا يبصرون، اور ان کو کچھ نظر نہیں آتا. رسول خدا نے ہاتھ میں خاک لی اور خاک اڑاتے ہوئے ان کے سروں پہ ڈالی خاک اور نکل گئے، گھر سے نکل گئے، انہیں کچھ نظر نہیں آیا. جبکہ اس وقت تک ان کے آپ بالکل شب کی ابتدا میں نکل گئے تھے، ان کے 25 افراد، علماء نے لکھا ہے کہ 25 افراد جمع ہو چکے تھے رسول خدا کے گھر کے دروازے پہ اور اطراف میں چاروں طرف. تو بہرحال وہ پوری جناب امیر علیہ السلام وہ اس رات جو ہے وہ تلوار سہن رکھ کے سو گئے، اور ان کو جو ہے وہ سب یہی سمجھتے رہے کہ جناب رسول خدا سو رہے ہیں. وہ بار بار جناب امیر کو دیکھتے تھے، اور انہیں جناب امیر کو جب بھی دیکھتے تو انہیں نور میں بھی فرق نظر نہیں آیا، پیغمبر کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا. وہ دیکھتے جاتے تھے اور کہتے تھے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں. نہ قد میں فرق نظر آیا، نہ ہی انہیں نور میں کوئی فرق نظر آیا. اور پیغمبر جو ہیں اس رات نکل گئے، ہجرت کر کے چلے گئے. پہلے وہ غار میں کچھ دیر غار ثور میں رکے، اور پھر وہاں سے نکل کے چلے گئے وہ مدینے. اور پھر بعد میں جناب امیر علیہ السلام ساری امانتیں لوٹا کے پھر رسول خدا سے جا کے ملے، کیونکہ واقعات بہت طولانی ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو یہ جو ہیں آیات ہیں کہ جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالی، اگر میں اس کو مکمل کر دوں جلدی سے، کہ اب یہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول پہ مکے میں سورہ کو نازل کیا ہے. اور یہ آیت بھی اسی لیے دلیل ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، اس آیت کی وجہ سے کہ رسول خدا نے اس آیت کی تلاوت کی. یہ 8 یا 9 آیات کی رسول خدا جو ہے وہ تلاوت کرتے جاتے تھے، اور ہجرت کر کے آپ پھر وہاں سے مدینے چلے گئے. اب مدینہ ہجرت کے بعد سے بہت سے واقعات ہیں. جناب امیر علیہ السلام بسر رسالت پہ سوئے، اگلے دن اٹھے اور آپ نے رسول خدا کے پاس جو لوگ امانتیں رکھوا کے گئے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ امانتیں، آپ نے سب کی امانتیں لوٹائیں. اور جس کی جو امانت تھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا مجھے میری امانت نہیں ملی، کہ یعنی جناب امیر صرف امانتیں جو رسول خدا کے پاس لوگ رکھوا کے گئے تھے، ان امانتوں کو صرف لوٹانے والی ہستی اور ان کو لوگوں تک پہنچانے والے جناب امیر ہیں. ولا یؤدی عنی الا علی، حدیث مشہور کہ کوئی بھی میری امانتوں کو نہیں لوٹا سکتا سوائے علی کے، جو ادائے امانت کرے گا وہ علی بن ابی طالب ہیں. تو اب یہ پوری ہے کہ بھئی ہم لوگوں کو بعض کا ڈراتے ہیں، یعنی اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں ڈرایا، تنبیہ کی، خوف دلایا، پھر بھی لوگ ایمان نہیں لے کے آتے. اور روزہ دار کے لیے بے انتہا بشارتیں ہیں، اور حدیث رسول خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، کما تصدع الحدید، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو کہا یا رسول اللہ اس کا پھر علاج کیا ہے اگر دلوں کو زنگ لگ جائے؟ لوہے کو تو ہم صاف کر دیتے ہیں، اس کو دھویا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس پہ کلے گی یعنی مختلف رنگ کر دیا جاتا ہے. تو کہا ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کا ذکر کرنے سے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے یہ جو دلوں کا زنگ ہے وہ صاف ہوتا ہے. تو دلوں کو سخت نہ ہونے دیں، دلوں کو سخت نہ ہونے دیں. بے انتہا جو ہیں اس وقت میرے ذہن میں روایات آ رہی ہیں، لیکن میں صرف ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بہرحال بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حساب کتاب جو ہے وہ سارا کا سارا کفار و منافقین سے ہے، مومنین سے تو کوئی حساب کتاب بھی نہیں، تو آپ ہمیں کیوں ڈراتے ہیں؟ بھائی کفار سے کون سا حساب کتاب؟ ان کی کوئی حسنات ہیں، کوئی نیکیاں ہیں؟ نیکیاں اگر ہیں تو دنیا میں ان کو اس کی جزا مل گئی، آخرت میں ان کی کوئی نیکی ہی نہیں ہے کہ ان کا کوئی حساب کتاب ہو، وہ تو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے. مشرک و کافر کا جو ہے وہ اس کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے. اور منافقین کے لیے بھی کہ جن کے پاس ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہیں، ان سے بھی یہی سوال ہوگا، وقفوہم انہم مسئولون، کو روکو، ان سے سوال کیا جائے گا ان پہ. اور پھر اس کے بعد سوا حساب کتاب روز قیامت ہوگا ہی مسلمانوں سے. اور اس دن جو روایت ہے، جو قرآن کی آیت ہے سورہ سجدہ کے اندر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، یعنی جو تم ये तुम्हारे जो हिसाब से 1,000 साल लंबा दिन है, यानी उसकी 50 फिर रिवायात में है जो इन्होंने नकल की हैं शहीद सगैब ने, कि भी 50 मौकफ हैं, एक एक मौकफ जो है वो 50, 1,000 साल का, यानी 50,000 साल दिन है रोज़ कयामत का, जिस दिन सबका हिसाब होगा, उस दिन सवालात किए जाएंगे, और खुद शियों का भी हिसाब किताब होगा, शियों का हिसाब किताब होगा, तभी जो उनकी शफात होगी कि भाई तूने इस मोमिन का दूसरे मोमिन ने हक कैसे मारा, तो मोमिनीन के लिए है, काफिरों के लिए हिसाब किताब नहीं है। एक उस्ताद है बच्चे को पढ़ा रहे थे, तो बच्चा घर आया और पढ़ने घर आने के बाद बीमार हुआ, बुखार हो गया। उसके बाप ने कहा बेटा क्या बात है तुम्हें बुखार क्यों हो गया? कहा बाबा जान आज उस्ताद ने एक आयत पढ़ी और उस आयत के जो है सुनने के बाद मैं बीमार हो गया। का कौन सी आयत? का ये सूरह मुज़म्मिल में ज़ाहरन ये आयत है, आयत नंबर 17, फकैफ तत्तकूना इन कफरतुम यौमन यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। क्या तुम्हारा हाल होगा उस दिन कि जिस दिन जब हिसाब किताब हुआ तो उस दिन विल्दान यानी जवान बच्चे, नौजवान यानी बिल्कुल लड़कपन में, जो लड़के जो हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, जवान जो हैं नौजवान बूढ़ा हो जाएगा, उस दिन से डरो। कहा बाबा ये मैंने आयत जब से सुनी है कि मैं बुखार हो गया मुझे और बच्चा जो है ताब नहीं ला सका। तो बाज़ औक़ात जो है वो इंसान सुनता है वाज़ नसीहत, लेकिन उसके अंदर कोई खौफ पैदा नहीं होता और उसके अंदर जो है वो असर नहीं होता। यहां तक कि खुद सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया है रोज़े आशूर, यौम आशूर खुतबा दिया, और उसमें जो है वो उन जो यजीदी हैं जो कातिलान ने सही दुश्मन, उनको जो खुतबा दिया तो कहा, उनको बताया कि जो मेरे सर पे है मामा रसूल खुदा का, ये सवारी रसूल खुदा की, ये तलवार, ये लिबास, तो सब रोने लगे, लेकिन कहा कि फिर भी तुम मेरा जो है वो कत्ल कर दोगे क्योंकि तुम्हारे शिकम जो है वो हराम से भरे हुए, हराम खोरी का असर ये होता है कि इंसान पे फिर वादो नसीहत का कोई असर नहीं होता। कुछ और सवाल आता है मैं जल्दी जल्दी जवाब पेश करूंगा और फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम को खत्म करेंगे। इफ वन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड अ कुरान एंड नॉट येट कंप्लीटेड, व्हाट इज द बेटर फॉर हिम टू जस्ट कंप्लीट द ऑलरेडी स्टार्टेड वन और टू स्टार्ट अनदर कुरान फॉर द मंथ ऑफ रमजान? कुरान करीम एक आदमी कह रहे हैं कि भी हमने शुरू कर रखा पहले से, कुरान माह रमजान से पहले शुरू कर दिया था और हम माह रमजान के अंदर जो है वो हमें दोबारा कुरान शुरू करूँ या उसी को? अगर आपने एक ही कुरान खत्म करना है तो फिर अव्वल से आखिर तक दोबारा पढ़ लें, और अगर आप जो हैं ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर जो आपने शुरू कर रखा है उसको कंप्लीट करें, उसके बाद फिर दोबारा आप वहीं से कंटिन्यू करें कि जहाँ से यानी आपने छोड़ दिया था माह रमज़ान के बाद, उसको कंप्लीट कर लें, माह रमज़ान में कुरान ख़त्म कर लें, और अगर आपने ज़्यादा पढ़ने हैं तो जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहें और फिर जब ख़त्म कर लें फिर दोबारा शुरू करके वहीं तक पढ़ लें, दोनों में कोई हर्ज नहीं। कैन आई रिसाइट 4 रकअ्स ऑफ तहज्जुद बिफोर सहरी एंड रिमेनिंग 3 रकअ्स बिफोर बिटवीन इमसाक एंड फजर, और डू आई हैव टू रिसाइट ऑल ऑफ देम टुगेदर? तहज्जुद की नमाज, यू डोंट हैव टू रिसाइट ऑल ऑफ देम टुगेदर, आप ईशा के बाद भी पढ़ सकते हैं, ईशा के बाद से कभी भी पढ़ सकते हैं, 2 रकत ईशा के बाद पढ़ ली, या 4 रकत या 8 रकत वहाँ पढ़ ली, या आधी रात के बाद अफजल है, आधी रात के बाद पढ़ें, और जितना फजर से करीब हो उतना सवाब ज़्यादा है, तो आप सहरी से पहले 8 रकत पढ़ लें और फिर सहरी के बाद जो आपका इमसाक का टाइम है उसके फ़ौरन बाद जब आपका सहरी का टाइम होगा उसमें आप जो हैं वो यू कैन रीड द 3 रकत देयर और इवन 1 रकत, यू डोंट हैव टू रीड 11 रकत टुगेदर, यू कैन यू डोंट इवन हैव टू रीड 11 रकत, आप 11 रकत बेशक ना पढ़ें, 2 रकत पढ़ लें, 5 रकत पढ़ लें, 7 रकत पढ़ लें, 1 रकत पढ़ लें, सिर्फ जो आखिरी 1 रकत है उसका फजीलत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगा जी, जी फरमाएं। कुरान में है कि इसको वही लोग छू सकते हैं जो पाक हैं, और हम शियों के मुताबिक औरत ये अयाम हैज में 7 आयात पढ़ सकती है, तो फिर इसमें आयत में क्या मुराद है? नहीं मेरे भाई, ये है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, उसकी बहरहाल एक ज़ाहरी तफसीर है, एक बातनी बातनी तौर पे कि आयत तथहीर का मिसाक आले मोहम्मद है, सिर्फ वो इसको समझ सकते हैं, और ज़ाहरी लिहाज से कि आप कुरान की लिखाई को बग़ैर वजू के छू नहीं सकते, यानी मैं अभी छू रहा हूँ तो मैंने वजू किया हुआ है, वजू करेंगे तो फिर छू सकते हैं, वजू के बगैर नहीं छू सकते, और खातून भी जो 7 आयात की तिलावत कर सकती है वो छू के नहीं, यानी मकरूह है 7 से ज़्यादा आयात की तिलावत करना, और वाजिब अयाम अपने खास अयाम के अंदर वाजिब आयत वाले सूरों को, जो वाजिब आयत वाले सूरे हैं उनकी तिलावत नहीं कर सकती, यानी जिस 4 सूरों में सजदा वाजिब है वाजिब सजदे वाली आयत, वो आयत भी नहीं बल्कि सूरह ही नहीं पढ़ सकती। कुरान में 14 सजदे हैं, 10 मुस्तहब है, 4 वाजिब है, सूरह नजम में, सूरह फुसलत में, सूरह सजदा में और सूरह अलक, इन 4 सूरों के सजदे वाजिब हैं। वो उसके अलावा जो हैं आप जो है वो खातून तिलावत कर सकती है, लेकिन कुरान की लिखाई को छू नहीं सकती क्योंकि वुजू उसके उसमें बातिल है, इसलिए अपने अय्याम में वो उसके कुरान की लिखाई को नहीं छू सकते। जिल्द को पकड़ सकती है, कुरान की लिखाई को मस नहीं कर सकते बगैर वुजू के, कोई भी नहीं छू सकता। और मुजनिब के लिए जो है वो लिखाई को भी छूना हराम है और कुरान की जिल्द को छूना मकरूह है। जी ये सवाल है किसी और हमारे मोहम्मद बहन का, मौलाना साहब क्या नमाज में सूरह फातिहा के बाद 2 सूरह पढ़ सकते हैं? 2 सूरह नहीं पढ़ सकते, कुरान करीम का 1 सूरह वाजिब है, इल्ला ये कि आप सूरह दुहा पढ़ें तो फिर उसके बाद सूरह अलम नशरह भी वाजिब है। 2 सूरह वो दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, सूरह अलम नशरह और सूरह दुहा अगर पढ़ें तो वो दोनों साथ पढ़ेंगे, और सूरह कुरैश और सूरह फील में से अगर कोई पढ़े तो दोनों पढ़ना वाजिब है। बस उसके अलावा बाकी सब जो है 1 सूरह पढ़ेंगे। वाजिब सजदे वाला सूरह जो है, जो मैंने 4 सूरे बताए, इनमें से कोई भी आप नमाज में नहीं पढ़ सकते क्योंकि उसको फौरन सजदा करना वाजिब है और नमाज की हालत जो है वो खराब हो जाएगी। हमारे अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ पढ़ सकते हैं, हमारे यहाँ जायज नहीं है। अगर आप नमाज में भी शुरू करते हैं तो फिर फौरन सजदा करना वाजिब है, उसके बाद फिर नमाज खराब हो गई वो आपने क्योंकि नमाज के दौरान सजदा कर दिया गलत जगह पे। इसलिए नमाज की तरतीब और उसके मुआलात वाजिब हैं, इसलिए वाजिब सूरह वाला जो है वो वाजिब सजदे वाला सूरह कुरान नमाज में नहीं पढ़ सकते। और इसी तरह से बहुत तुलाने सूरह नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो मुसहब नमाज में पढ़ सकते हैं, वाजिब नमाज में नहीं, क्योंकि लोग ये ना कहें कि इसकी नमाज ये क्या कर रहा है कि नमाज की सूरत जो है वो खत्म हो जाए। बस ये हम आखिरी सवाल ले रहे हैं, इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम और सवाल ले लेंगे। सलाम अलैकुम अस्सलाम, क्या बिना वुजू के फोन पे कुरान पढ़ सकते हैं? जी हाँ, कुरान पढ़ने के लिए वुजू शर्त नहीं है, कुरान छूने के लिए वुजू शर्त है। यानी आप कुरान फोन से देख के पढ़ रहे हैं या टैबलेट पे पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं या कुरान करीम में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपका वुजू नहीं है तो कुरान में आप हाथ नहीं लगा सकते, लिखाई को कुरान के अल्फाज को बगैर वुजू के हाथ नहीं लगा सकते, बगैर वुजू के कुरान पढ़ सकते हैं। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته